हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के घर जाकर अंतिम दिनों के संतों का की महाजवान महिलाओं की सभा में इस सुंदर शाम को टेंपल स्क्वायर पर। हम कॉन्फ्रेंस सेंटर जो सॉल्ट लेक सिटी यूटा में है मैं आज रात इकट्ठा हुए हैं उनके माताओं उनके नेताओं की स्वीकार करते हैं जो इसी तरह की सभाओं में हो रही हैं। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन की सभा जो अध्यक्षता कर रहे हैं ने कहा कि मैं संचालन करूं। मैं बहन इलेन एस डाल्टन है। हम प्रसन्न हैं कि प्रॉफिट प्रधान प्रेसिडेंट मॉन्सन उनके सलाहकारों प्रधान हेनरी बी आयरिंग और प्रधान डेटर उक्टॉर्फ हम उसी तरह एल्डर नील एंडरसन 12 के एल्डर क्रेग सी क्रिस्टेंसन 70 के और बिशप डेविड बर्टन गिरजागर की बिशप हम इन भाइयों को पुष्टि और सम्मान करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उनकी आज शाम सहायता और उपस्थिति के लिए मंच पर बैठे हैं हुई मेरे सलाहकार बहन कुक और बहन डिब। मैं इन महिलाओं से प्रेम करती हूं और धन्यवाद देती हूं उनके समर्पण और उनके धार्मिक जिंदगी के लिए। कृतज्ञता से हम आभारी हैं सहायक संस्था और प्राथमिक महाअध्यक्षता के लिए साथ में जवान महिलाओं के महापरिषद के लिए। हम सब का स्वागत करते हैं जो यहां उपस्थित हैं टेलीविजन सैटेलाइट इंटरनेट और अन्य टेक्नोलॉजी से। ये आश्चर्य है कि हम उन्हें दुनिया भर की परिश्रमा के से के साथ होने में ये एक महिमा सभा है श्रेष्ठ जवान महिलाओं के लिए जो तैयार प्रॉफिट के बात सुनेंगे। इस सभा का संगीत उस गायक की मंडली का प्रस्तुत किया जाएगा जो जहान महिलाओं यूटा अमेरिकन फोक स्टेक से हैं। ऑर्गन पर बॉनी गुडलिफ है। गायक मंडली अभी गाएंगे कम ये चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड। संगीत के बाद प्रार्थना एबिगेल पिनेकर एक लॉरल सॉल लेक बॉनविल स्टेक द्वारा किया जाएगा।
Our dear, kind and gracious
Heavenly Father, पिता परमेश्वर,
हम आपके
हम यहाँ होने के लिए बहुत आभारी हैं हमारे प्रॉफिट और लीडर्स को की बात सुनने के लिए. हम उनकी गाइडेंस के लिए बहुत आभारी हैं. हम आभारी हैं कि हम यहाँ हो सकते हैं आपकी प्रॉफिट, और हम मांगते हैं कि हम पवित्र आत्मा को सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं जो हम आज सीखेंगे. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और यीशु मसीह के नाम में ये कहते हैं, आमीन.
The choir will now
अब गायक मंडली हमारे लिए संगीत पेश करेंगी एज Zion's Youth in Latter Days, जिसके बाद बहन एन एम डिब्स हमें संबोधित करेंगी. उनके बाद बहन मैरी एन कुक से सुनेंगे, जो जवान महिलाओं की महाअध्यक्षता में प्रथम सलाहकार है. हम उसके बाद वीडियो प्रसारण देखेंगे, जिसमें विश्वभर की जवान महिलाओं की प्रशंसा कहते हैं चुस्त रहना और उदाहरण बनना.
It is a privilege for me to
share. एक सौभाग्य है ये शाम तुम्हारे साथ होना. हर जनवरी में उत्साह से नई म्यूचुअल लक्ष्य के घोषणा का इंतजार करती हूँ. हालांकि मैं थोड़ी देर के लिए सोचती हूँ कि क्या मैंने पिछले वर्ष के लक्ष्य को सीख लिया है. एक क्षण के लिए हम हाल के लक्ष्यों को देखें। शुद्धता को अपने मन में हर समय रखो, अतल और अचल रहो, हमेशा अच्छे कार्य में व्यस्त, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, मजबूत बनो और भय न कर। और 13वां विश्वास का विषय, हम विश्वास करते हैं सच्चे होने में, विश्वासकारी, सती पवित्रता, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना। इन धर्मशास्त्र का अध्ययन करना और उपाय गौर करने पूरे साल भर ने इनको हृदय में हमारे मन और हमारे गवाही का भाग बनने दिया है। सेक्शन 115 का शीर्षक बतलाता है वर्ष था 1838 और जगह था फार वेस्ट मिजोरी। जोसेफ स्मिथ परमेश्वर की इच्छा बतलाता था उस जगह को स्थापित करने के लिए और प्रभु के घर को भी। भविष्यवक्ता आशावादी और प्रोत्साहन से भरा था। वेस्ट 5 में जहां हमें इस वर्ष के लक्ष्य मिलता है, प्रभु ने हमसे कहा, चुस्त रहो और उदाहरण बनो ताकि हमारा रोशनी अन्य देशों के लिए एक आधार बन जाए। तुम क्या सोचते हो जब चुस्त रहो शब्द को सुनते हो? निजी रूप से मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, गिरजाघर के श्रेष्ठ युवा। मैं तुम्हें आदर्श पूर्वक हर सुबह खास से जगते देखने की कल्पना करती हूँ, सुबह की सेमिनरी में जाने के लिए। मैं तुम्हें विश्वासपूर्ण ढंग से घुटनों पर प्रार्थना करने से देखती हूँ। मैं कल्पना करती हूँ तुम्हें हिम्मत से अपनी गवाही देने जाने पर अपने आदर्श की रक्षा करने के लिए। मैं प्रेरित हुई हूँ सुसमाचार के प्रति तुम्हारी लगन और अच्छे उदाहरण देखने के लिए। एक सबसे अच्छा तरीका हम चुस्त रह सकते और उदाहरण बन सकते हैं, वो है परमेश्वर की आदर्श के पालन करने से। हम इन आदर्शों के बारे में सुसमाचार से अंतिम दिनों भविष्यवक्ताओं और फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ पुस्तिका से सीखते हैं। तुम हर एक के पास अपनी खुद की एक पुस्तिका होना चाहिए। मेरे अपने पुस्तिका में मैंने के लिए फोर और तुम यू शब्द को गोला किया है, जैसे मुझे एक अच्छे दोस्त ने सिखलाया था। ऐसा करने से मैं याद कर सकती हूँ कि ये आदर्श सिर्फ मेरी पुस्तिका में शब्द नहीं है, ये खास रूप से मेरे लिए है। मैं आशा करती हूँ कि तुम समय निकालकर इन शब्दों को अपनी पुस्तिका में गोला करोगे, शुरुआत से अंत तक पढ़े और आत्मा को गवाही देते महसूस कर कि वो तुम्हारे लिए है। आप में से कुछ लोग होते हो जो द स्ट्रेंथ फॉर यूथ में दिए गए आदर्शों को न मानना या भूल जाने के लिए बेहद सकते हैं। वो शायद पुस्तिका को देखने और कहेंगे, देखो माँ, पुस्तिका नहीं कहता ये। वो अपने आप की सफाई पेश करेगी, मैं जो कर रहा हूँ उतना भी खराब नहीं है। मैं निश्चय हूँ कि मैं अपने दोस्त के जैसा खराब नहीं हूँ। प्रधान हेरल्ड भी ली ने सिखलाया, परमेश्वर ने नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण वो है जिसका पालन करना आज तुम्हारे लिए कठिन है। राजा बेंजामिन ने कहा, मैं उन सब बातों को नहीं बता सकता जिनके द्वारा तुम पाप कर सकते हो, क्योंकि उनके इतने भिन्न भिन्न तरीके हैं कि मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकता। अगर तुम इन आदर्शों और आज्ञाओं का पालन करने में तकलीफ का सामना कर रहे हो, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि सुसमाचार में सहायता ढूंढने का अपने धर्मशास्त्र पढ़ो, गिरजाघर के औपचारिक वेबसाइट पर समय बिताए lds.org सवालों के जवाब पाने के लिए, अपने माता पिता से बातें करें, अपने गिरजाघर नेताओं से और उनसे जो सुसमाचार के अच्छे उदाहरण है, प्रार्थना करें, अपने स्वर्गीय पिता के आगे अपने मुसीबत को बताए जो तुमसे प्रेम करता है, पश्चाताप के उपहार को हर दिन इस्तेमाल करें, औरों की सेवा करें और सबसे आवश्यक पवित्र आत्मा के प्रेरणा को सुने और पूरे करें। प्रधान मोनसन हम सबको ये शब्द प्रोत्साहित करता है, मेरे जवान दोस्तों मजबूत रहो, तुम जानते हो क्या सच और क्या गलत है, जितना भी अच्छा हो बदलता जा सकता है, और अगर जिन्हें तुम दोस्त कहते हो तुम्हें कुछ करने को कहे जो तुम जानते हो गलत है, तुम आगे बढ़कर सच्चाई की रक्षा करना भले ही तुम अकेले रहो। स्वर्ग पिता नहीं चाहते हैं कि दुनिया को देख के और उसके हमेशा बदलने वाले तरीकों को अपनाएं। वो चाहता है कि हम उसको देखें और उसके ना बदलने वाले मार्गदर्शन को अपनाएं। वो चाहता है कि हम सुसमाचार को जिए और औरों को उस तक पहुंचाए ऊंचे आदर्श का उदाहरण देखकर। धर्मशास्त्र में कई महान उदाहरण है जो इस विचार को दिखाता है। हम सैमसन के बारे में सीखते हैं। सैमसन महासौभाग्य के साथ पैदा हुआ था। उसकी माँ को वादा मिला था, वही इसराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ा में शुरुआत करेगा, मगर जैसे जैसे सैमसन बड़ा हुआ वो ज्यादा दुनिया के भेकावे को देखा गया ना कि परमेश्वर के मार्गदर्शन को। उसने चुनाव बनाया क्योंकि उसे अच्छी लगती थी, ना कि वो चुनाव सही था। लगातार धर्मशास्त्र में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है और वो गिरता गया। जब उसमें सैमसन के यात्राओं कार्यों और चुनाव के बारे में बताता है, अपनी महान संभावना का पूरा करने के लिए चुस रहने और उदाहरण बनने के बजाय सैमसन दुनिया में घुल गया, परमेश्वर की दी गई शक्ति को खो दिया और एक दुखदार और जल्द मृत्यु का शिकार हुआ। दूसरी ओर धर्मशास्त्र डेनियल के उदाहरण देता है। डेनियल भी महासौभाग्य के साथ पैदा हुआ था। डेनियल के पुस्तक में अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, जब ये देखा गया डेनियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिला। जब डेनियल के सामने दुनिया के बेखावे आए, वह समझ के आदर्श की और ना झुका और उठा और स्वर्ग की ओर देखा। राजा ने दुनियादारी वाले कानून 30 दिन तक किसी और से प्रार्थना ना करा का पालन करने के बजाय डेनियल अपने घर में गया, जहां वो जरूसलम की ओर देखकर दिन में 3 बार घुटनों पर हुआ और प्रार्थना किया। डेनियल परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने के लिए नहीं डरता था, भले ही उसे कठिनाई से अपने रात गुजारा शेर के गुफा में सच्चाई को बढ़ाकर रखने के लिए उसे सुरक्षा और आशीर्वाद मिला था आज्ञाकर्ता के लिए। जब राजा दरियस ने डेनियल को शेर के गुफा से निकाला, उस सुबह उसने कानून बनाया कि सभी को डेनियल के परमेश्वर से डरना चाहिए और उसके विश्वास के उदाहरण को अपनाना चाहिए। मुझे मौका मिला कि अंतिम दिन के युवा के उदाहरण देखने के, तुम्हारी तरह जो चुस्त रहने और उदाहरण बनने से डरते नहीं और अपने दोस्तों में आदर्श के रोशनी बातें हैं। जोवाना गिरजाघर की एक सदस्य थी अपने पाठशाला में और अपने वार्ड की एक ही जवान महिला थी। उसने अपने आप से और प्रभु से वादा किया कि वो कभी गालियां नहीं देगी। उसने अपने आदर्श कम ना किया। उसने अब उसे मांग की ताकि अपने आदर्शों के सामना कर सके। कई बार याद दिलाने के बाद उसने दोस्त ने नए कायदे अपनाए और बेहतर शब्द इस्तेमाल किए। कई लोग ने बदलाव देखा, जिसमें से उस लड़की के पिता भी था जिसने जोआना को धन्यवाद दिया अच्छे प्रभाव के लिए। फिलीपींस में प्रशिक्षण देने में जब हम गए थे, मेरी मुलाकात केरन से हुई, जिसने एक अनुभव बताया अपने लॉरर के दिनों की, जब वो होटल और रेस्टोरेंट निदेशक की डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। एक शिक्षक चाहता था कि हर विद्यार्थी अनेक प्रकार के शरबत बनाए और चाहे जो रेस्टोरेंट में दिया जाएगा। कुछ शरबत में नशा था और केरन जानती थी कि वो प्रभु के आज्ञा के खिलाफ है उसे चखना। जटिल परिस्थितियों में केरन को शक्ति मिली और चुस्त होकर उदाहरण बनने के लिए, और उसने शरबत को नहीं चखा। केरल ने बताया, मेरे शिक्षक ने मेरे पास आए और पूछा क्यों मैं नहीं पी रही थी। उसने कहा, मिस कैरन, तुम स्वाद को कैसे जानोगे और इस जरूरी कक्षा में सफल कैसे होगी अगर तुम इसे चिखोगे नहीं। मैंने उसे बताया कि मैं यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का एक सदस्य हूँ। हम वो नहीं पीते जो हमारे लिए हानिकारक है। जो भी मुझे करना होगा, चाहे असफल होना, उसके कष्ट में मैं समझ सकती हूँ, मगर मैं अपने आदर्श का पालन करने में असफल नहीं होना चाहती। हफ्ते बीत गए और उस विषय पर कुछ नहीं बात नहीं कहा गया। सेमेस्टर के अंत में केरन जानती थी उसके अंतिम परिणाम उसके शरबत चिखने के इनकार के वजह से होगा। वो अपने परिणाम को नहीं देखना चाहती थी, मगर जब उसने देखा तो कक्षा में उसके सबसे ऊंचा परिणाम था। उसने कहा, मैंने इस अनुभव से सीखा कि परमेश्वर जरूर हमें आशीर्वाद देगा जब हम उनकी सुनेंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मुझे असफल परिणाम मिलता, मुझे अपने किए पर दुख नहीं होता। मैं जानती हूँ मैं कभी प्रभु के नजर में नहीं गिरूंगी जब मैं सही चुनूंगी। प्रिय जवान महिलाएं, तुम में से हर एक महान सौभाग्य से जन्म हो। तुम स्वर्गीय पिता के प्रिय पुत्री हो। वो तुम्हें जानता और तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हें चुस्त रहने उदाहरण बनने का निमंत्रण देता है और वो वादा करता कि जब तुम करोगी वैसा वो तुम्हें स्वीकार करेगा और आशीष देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम सब वो हिम्मत पाओगे उनके निमंत्रण को अपनाने के लिए और उनके वादों को पाने के लिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
My dear young women, how we love each one of you.
मेरी प्यारी जवान महिलाएं, हम सबको बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें हिम्मत से कार्य करते और उदाहरण बांटते हुए देखते हैं। दुनिया एक अंजे में जहां महान चुनौतियों के साथ महान अवसर भी मिलती है। इससे तुम्हें अचंभा होगा कि मेरी भविष्य में क्या है। मैं तुम्हें बतलाती हूँ कि परमेश्वर की शुद्ध पुत्री की तरह तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम ऐसे समय में रहते हो जब सुसमाचार की समाचारों और पुनः के गया है और वो सच्चाई तुम्हारे धर्मशास्त्र में मिलेंगी। तुमने अपने बपतिस्मा के पर पवित्र आत्मा की उपकार को पाया है और पवित्र आत्मा तुम्हें सच्चाई को सिखलाएंगे और तुम्हें जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। परमेश्वर ने हमें नैतिक चुनने की शक्ति दी है और धरती पर सीखने को अवसर और उसके पास कार्य है जो तुमसे करना है। तुम्हें भविष्य के लिए चाबी, तुम्हारे आशा की किरण, ये फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ की किताब में मिल सकता है। शिक्षण के स्तर के नीचे और जवान महिलाएं ज्ञान के मूल से। शिक्षा मौके के दरवाजे खोलेगी। जब तुम प्रभु के उपदेश पर चलोगे, ज्ञान ढूंढना और अध्ययन से विश्वास भी दे। ज्ञान ढूंढना मेहनत से सीखेंगे। प्रेजेंट गॉर्डन बी हिंकली ने गिरजाघर के युवा को बुद्धिमानी से कहा, तुम पूरी शिक्षा को हासिल करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। किसी भी चीज को बलिदान करो जो जरूरी है। अपने मन को और अपने हाथों को सिखलाओ कि अच्छे प्रभाव का बने आपके आगे के जिंदगी में। खास तौर से जवान महिलाओं से बताए हुए प्रेजेंट मॉन्सन ने कहा, भविष्य अक्सर अनजानी होता है, इसलिए हमें जरूरी है कि हम आने वाले अनजान मुसीबतों को जानें। मैं तुम से गुजारिश करता हूँ कि शिक्षा को जारी रखो और मूल गुण से सीखो ताकि जब ऐसा स्थिति हो तो तुम तैयार हो सामना करने के लिए। इन इच्छा और प्रेरित भविष्यताओं के आदेश पर चलो। अपने पाठशाला में आगे बढ़ो। अगर तुम अपने पाठशाला के कार्य में कठिनाई या निराशा से का सामना कर रहे हो, अपने माता पिता, शिक्षकों और गिरजाघर के मददगार सदस्य करो। कभी हिम्मत मत हारो। उन सभी चीजों की सूची तैयार करो जो तुम सीखना चाहते हो। अपने शिक्षकों के लक्ष्य को अपने परिवार, दोस्तों और नेताओं के संग बताओ ताकि वे तुम्हें मदद कर सकें। ये पर्सनल प्रोग्रेस का तरीका है। चुनो और इस ज्ञान को अपने आप पर भारी न होने दो या अपने बढ़ंती को धीमे न होने दो। जागो जवान महिलाओं, तुम अपने लक्ष्य बनाओ, तुम निर्णय लो कि यह तुम्हारे मन और दिल में जाए। कुछ बहुत जरूरी शिक्षण कक्षा के बाहर होती है। अपने आप को आदर्श महिलाओं के घिरे रहो और गृहस्थी, कला, संगीत, परिवार, इतिहास, खेल कूद, लिखना और पढ़ने को सिखला सकाओ। उन्हें पहचानो और उनसे सलाह जो। जब तुमने कुछ नया सीखा है, म्यूचुअल में बनाओ सिखलाओ ताकि दूसरी जवान महिलाओं के लिए सलाहकार बना ऑनर बी के जरूरतों के पूरा करने के लिए। मेरी माँ के अलावा मेरे जिंदगी में कई सलाहकार थे। मेरी प्राथमिक शिक्षक ने मुझे क्रॉस स्टिच करना सिखलाया। मैं अपने घर में सुसमाचार की रोशनी को लाऊंगा। एक तस्वीर जो मेरे कमरे में लगा था युवा उम्र में, मेरी शिक्षक ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे सही तरीका सिखाया और हमेशा मुझे हिम्मत देती रही। दो लाजवाब दर्जी ने मेरे वार्ड ने मुझे सीना सिखाया। इस कारण से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी और अन्य चित्रों में मैंने सफलता पाई। अभी इस ज्ञान को पाने में बहुत ही मूल्य मिलेगी और अब है। एक माँ की शिक्षा गरीबता को दूर करने की चाबी बन सकती है। पढ़ी लिखी महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं, उनके बच्चे स्वस्थ निश्चयी होते हैं और उनकी समझ और विचार बहुत अच्छे होते हैं। हम फैमिली अप्रोक्सीमेशन टू द वर्ल्ड में सीखते हैं कि माताएं प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं अपने बच्चों को का पालन पोषण करने में। अपने बच्चों को शिक्षा देने उस पालन पोषण का भाग है और तुम्हारी पवित्र जिम्मेदारी है। तुम सब के जरूरी शिक्षक होगे अपने बच्चों के लिए, तो अपने शिक्षा को साधाओ करो। अपने बच्चों और भविष्य के घर को आशीर्वाद दो जितना भी कर सकते हो। आज सीखना विश्वास से ज्ञान को ढूंढो। हम विश्वास से सीखते हैं कि हम धार्मिक ज्ञान को पाते हैं, प्रार्थना सुसमाचार को सीखते हैं और आज्ञाकारिता से, और जब हम पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन को लेते हैं जो सारे सच्चाई को बयान करते हैं। अगर तुम अपनी भूमिका निभाओगे ज्ञान पाने के लिए, पवित्र आत्मा तुम्हारी मन में समझाएगी, पवित्र आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन देगी और तुम्हारे शिक्षा में बढ़ती होगी। जब मैं जवान महिला थी, मैंने स्कीज उधार लिया और थी जो बहुत लंबे थे, बूट जो बहुत की ज्यादा बड़ा था, और एक दोस्त ने मुझे स्की करना सिखाया। चिंता खुशहाली में बढ़ गई जब मैंने एक गहरी खाई के बारे में सीखा। मैं खेल को पसंद करने लगी। कुछ ही बार में मैंने जाना कि सभी स्की करने के दिन मौसम अच्छी नहीं होती। जब बदरी होती है, हम फ्लैट लाइट नमक परिस्थिति में खेलते हैं। फ्लैट लाइट होता है जब सब सूरज की रोशनी बादल के पीछे छिप जाती है, आगे सफेद बर्फ को देखते हुए गहराई नहीं नजर आती और बहुत मुश्किल होता है जानना कि कितनी गहराई है और गड़े और छोटे पहाड़ों को देखना। जवान महिलाएं, तुम अपनी भविष्य को इंतजार करने रहे उसी तरह जैसे मैं स्की को गहराई देख रहे। तुम कभी कभी महसूस करोगे कि हम कम रोशनी होगी जो आगे नहीं देख सकेंगे। विश्वास से सीखना तुम्हें साहस देगा और मदद करेगा तुम्हारे बुरे समय पर। मैथ्यू के 25 चैप्टर वर्स 10 में है कि हम सीखते हैं कि धार्मिक तैयारों जरूरी है और एक हर एक करना चाहिए। तुम याद करोगी कि सब 10 कन्याओं को दूल्हे के साथ देने के लिए शादी में ले जाया था, मगर सिर्फ 5 तैयार थी दिए में तेल लेकर। और मुख ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ दे दो हमी, क्योंकि हमारे मशाले भुज रही है। परंतु समझदारों ने कहा, कहते कड़छित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, इसलिए हम रखेंगे। जब वो तेल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। तुम इस और दरवाजा बंद था। तुम उसे स्वार्थी समझोगी कि पांच कुंवारी कन्याओं ने तेल को नहीं बांटा, मगर वो नहीं हो सकता। धार्मिकता और तैयारी के लिए करना चाहिए धीरे धीरे, और वह बांटा नहीं जा सकता। अब समय है कि हम अपने धार्मिक ज्ञान को बढ़ाएं धीरे धीरे, प्रार्थना से, धर्मशास्त्र को पढ़कर और आज्ञाकारी होकर। अब समय है कि शिक्षा को करने का धीरे धीरे। हर एक अच्छे सोच और कार्य मदद करता है अच्छा इंसान बनने में, तुम्हें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन देने में सफल करता है। हमारे दिव्य शिक्षक पवित्र आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन देगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम उस मार्ग पर हो जो अनंत जीवन तक जाती है, पवित्र आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन देगा तुम्हारे फैसले और शिक्षा में। मैं अपने विज्ञान से कहती हूँ कि ज्ञान ढूंढोगे तो सिर्फ मिलेगा, मार्गदर्शन पा सकोगे जब जो प्रार्थना चाहता है कि तुम करो और जो तुम्हें जरूरी हो जाना। मैंने अपने कुलपति की आशीर्वाद को जवान महिला होने के समय पाई थी और सलाह मिली थी कि मैं अपने आप को अच्छे शिक्षा में तैयार करूं और जिंदगी में जल्द सिखा वह धार्मिकता जो गृहस्थी बनाने और परिवार को पालन पोषण में कर सके। मेरे पति रंडोवा हो गए थे और इस दिन जब हम मंदिर में बंदे थे, मुझे अचानक से पति और एक चार बच्चों का परिवार आशीर्वाद मिला। उस पहले वहां पर कई दिन जब मैं महसूस किया था कि मैं कम रोशनी में थी, सवाल हुए क्या भविष्य में क्या है। मैं अपने कुलपति के आशीर्वाद को करने की कोशिश किया था। मैंने गंभीरता से सीखा था कि पाठशाला के शिक्षक बनने के लिए अपने पढ़ाई को पूरा किया, प्राथमिक पाठशाला के प्रधान बनने के लिए मैंने अपने स्वर्ग के पिता से प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन को प्राप्त किया। मैंने भविष्यताओं के वादे पर बहुत विश्वास किया और मैंने आश्वासन किया कि मैं सच्चा और विश्वासी रहूं, मेरे वादान को रखो और पिता अनंत आशीर्वाद को कभी इनकार नहीं करेंगे। मैं जानती हूं कि मेरी शिक्षा ने मुझे जिस जिंदगी के लिए तैयार किया, वैसा ही कुछ भी नहीं जैसा मैंने जवान महिला पर सोचा था। मैंने सोचा था कि शिक्षा हासिल कर रही थी पाठशाला और मेरे भविष्य के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मगर मैं नहीं जानती थी कि प्रभु मुझे तैयार कर रहे थे मंगोलिया में अंग्रेजी और के पढ़ाने के लिए। मैं गवाही देती हूँ कि हमारे स्वर्ग के पिता तुम्हें जानते हैं और तुमसे प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम उस महान कार्य कर सकते हो जो करना चाहिए। इसका मैं गवाही देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Strength to
I hope you will
मैं आशा करती हूँ कि तुम सदा अपने दिल में याद रखोगी जो तुमने आज रात महसूस किया है, जो प्रेरित सलाह तुम्हें प्राप्त हुई। यह अब मेरी सौभाग्य होगी कि मैं तुमसे बात करूँ। मेरे भाषण की समाप्ति पर गायक अन्नी माइक गाएगी ब्यूटिफुल सेवियर और आई फील माई सेवियर्स लव बाउंडिफुल यूटा हाइट्स डे की मायामेड डैफनी उरुलायन के साथ बोल पर।
जवान महिलाओं के दफ्तर की खिड़की से मुझे सोलेक मंदिर का विद्या दृश्य दिखता है। हर दिन मैं देवदूत मोरनाई को देखती हूँ। मंदिर के ऊपर खड़ा हुआ न सिर्फ अपने विश्वास का चिन्ह मगर हमारे विश्वास का भी। मैं मोरनाई को पसंद करती हूँ क्योंकि एक बहुत ही सांसारिक समाज में वो पवित्र और सच्चा बना रहा। वो मेरा वीर है। वो अकेला खड़ा रहा। मैं महसूस करती हूँ कि किसी तरह वो आज भी मंदिर के ऊपर खड़ा है। हमें कहता है चुस्त रहो और उदाहरण बनो। मुझे लगता है कि वो तुम्हें और मुझे बुला रहा है हिम्मत रखने के लिए। याद रखना कि हम कौन है और पवित्र मंदिर में जाने के लिए योग्य है। चुस्त रहे संसारिक शोर से दूर और जिसे अजाया ने भविष्यवाणी की थी आओ प्रभु के पहाड़ तक पवित्र मंदिर। आज यहाँ उपस्थित है प्रभु की चुनी हुई पुत्रियाँ। इससे प्रभावित दल इस दुनिया में नहीं है जो सच्चाई और धार्मिकता के बरकरार रखता है इन जवान महिला और बड़ी महिलाओं की तरह जो यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के है। तुमने विश्वासी कुलपतियों इब्राहिम आइजक और जेकब के धार्मिक आदर्शों को पाया है। परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता ने कभी आप सब इकट्ठा महिलाओं को भविष्य का एक बहुत चमकता आशा कहा था और मैं समर्थन देती हूँ। एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दुनिया में तुम्हारी रोशनी बहुत चमकती है। यकीन इन दिनों को बुलाना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे दिन है और अब समय है हर जगह के जवान महिला को चुस्त रहने उदाहरण बनने का। एक आदर्श माप लेने के लिए है कि तुम कितने सही और दोषीन है। हमें पूरे दुनिया को दिखलाना कि एक आदर्श बनना है। फिर से प्रस्तुत किए फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ पुस्तिका में सिर्फ ठीक से जीने के आदर्श नहीं शामिल है पर वादे किए गए आशीर्वाद भी। अगर तुम वैसा करोगे इस जरूरी पुस्तक में दिए गए शब्द दुनिया के लिए आदर्श है और इन आदर्शों को जीने से तुम जान पाओगे क्या करना है। उद्धारकर्ता जैसा बनने के लिए और सदा अंधेरा होते दुनिया में खुश रहना। इस पुस्तिका में दिए गए आदर्शों द्वारा तुम पवित्र आत्मा के लगातार साथ के लिए योग्य रहोगे। इन आदर्शों को जीना तुम सब को प्रभु के पवित्र घरों में जाने के योग्य बनाएगा और वहां तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति मिलेगी। जब हमारी बेटी एमी छोटी थी वो सब कुछ देखती जो मैं गिरजाघर जाने से पहले करती। मेरे काम का तरीका को देखकर वो अपने बाल झाड़ती और कपड़े पहनती और फिर वो मुझे कुछ चमकानी जैसे वो कहती थी उसके चेहरे पर लगा ना को कहा। उसकी चमकानी गाढ़ा क्रीम था जिससे मैं चमड़े को शिकुनने से बचती थी मगर उसकी मांग पर मैं वो एमी के गाल पर और होठ पर लगाती और वो हंस कर कहती अब हम चलने के लिए तैयार है। एमी नहीं जानती थी कि उसके चेहरे पर चमकानी पहले से है। उसका चेहरा चमक उठता क्योंकि वो इतनी पवित्र और मासूम और अच्छी थी और क्योंकि उसके साथ आत्मा का साथ था। मैं चाहती हूँ कि हर जगह हर जवान महिला को आज रात यहाँ उपस्थित है तुम्हारे सुंदरता को जानेगी और समझेगी। तुम्हारा चमक वो सजने में गाढ़े क्रीम में या नए कपड़े और बाल बनाने में नहीं होता। वो तुम्हारे अपनी सुंदरता में है। जब तुम आदर्शों को जियोगे और पवित्र आत्मा के लगातार प्रभाव में रहोगे, तुम जगत पर शक्तिशाली असर डाल सकोगे, तुम्हारा उदाहरण और तुम्हारे आंखों की रोशनी भी। कहाँ से ये रोशनी मिलती है? प्रभु रोशनी है, और जोसेफ स्मिथ ने सिखलाया कि आत्मा दुनिया का हर मनुष्य को रोशनी देती है, और आत्मा दुनिया में उन सब को जानकारी देती है जो उसके आवाज को सुनता है। इसके अलावा आप सब देख सकते हो, चमकाने वाली क्रीम मेरे सिकुंदे वाले चेहरे पर उतना लाभदायक नहीं था। अगर तुम इस दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हो, तुम्हें दुनिया से अलग होना पड़ेगा। मैं जोसेफ एफ स्मिथ के शब्द दोहराती हूँ, जिसने अपने समय की महिलाओं से कहा था, तुम दुनिया के जवान महिलाओं को तुम्हें उदाहरण ना देने दो, तुम उन्हें उदाहरण दो जो दुनिया की जवान महिलाएं हैं। हर बात में जो मनुष्य के बच्चों को शुद्ध देती है, ये शब्द आज भी सच्ची है। परमेश्वर की पुत्री होने के नाते तुम्हारी पैदाइश नेतृत्व के लिए है, के लिए थी। जिस दुनिया में हम रहते हैं, तुम्हारे नेतृत्व करने की क्षमता के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और साथ जरूरी होगा, जो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे हम उसके मार्गदर्शन और प्रेरणा को पहचानोगे और उस पर भरोसा करोगे। हम सबको कुछ बदलाव करना पड़ेगा पश्चाताप करने के लिए। जैसे राजा लमोनाई के पिता ने मोर्मन धर्मशास्त्र में कहा था, तुम्हें जानने के लिए मैं अपने सभी पापों को त्याग दूंगा। क्या हम यानी कि तुम और मैं ऐसा ही करना चाहते हैं? एरिजोना का युवक का एक दल ने निश्चय किया चुस्त रहने और उदाहरण बनने का, और अपने समाज के युवक को फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ के आदर्श सिखाने का। हर एक ने अपने जर्नल में ऐसी बात लिखी जो उनके लिए रुकावट थी या जो वो अपने जीवन में बदलना चाहते थे, और फिर उन्होंने एक गड्ढा खोदा। उन्होंने साथ मिलकर ये सब किया जैसे मोर्मन धर्मशास्त्र में एमन के लोगों ने अपने यूथ के सामान को गड्ढे में फेंका था। फिर उन्होंने उन पन्नों को दफन कर दिया, और उस दिन उन्होंने बदलने का विषय लिया। उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने चुस्त रहने का निर्णय ले लिया था। क्या तुम्हारे जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है? तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम उद्धारकर्ता के अनंत प्रशेतित के बलिदान का कारण पश्चाताप कर सकते हो। उसने तुम्हें और मुझे बदलने का मौका दिया है, और उसने वादा किया है कि जब हम ऐसा करेंगे, वो हमारे पापों और गलतियों को माफ कर देगा। कभी कभी चमकते रहने नामुमकिन लगेगा। तुम इतने सारे चुनौतियों के सामना करोगे कि रोशनी का स्रोत नहीं दिखेगा जो कि उद्धार करता है। कभी कभी मार्ग कठिन होता है, और ऐसा भी लगेगा कि कभी की एक घेरा कोयरा रोशनी का ढूंढला कर रहा है। ऐसा ही था फ्लोरेंस चैडविक नामक एक जवान महिला के साथ। 10 साल की उम्र से फ्लोरेंस जानती थी कि वो एक अच्छा तैरने वाली थी। वो इंग्लिश चैनल नामक नदी के इस पार से उस पार तैरी थी 13 घंटा और 20 मिनट में। फ्लोरेंस चुनौती पसंद करती थी। उसने बाद में कैलिफोर्निया में कैटलिना द्वीप तक तैरने की कोशिश की। इस बार वो 14 मील तक कर गई थी, पर वो थक गई थी। किनारे के पास एक घेरे खोईरा देखने में बड़ा डाल रहा था। उसकी माँ उसके बगल में एक नाव में थी, और फ्लोरेंस ने अपनी माँ से कहा कि वो इस बार अंत तक नहीं पहुँच सकेगी। उसकी माँ और उसके शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित किया, मगर वो उसे सिर्फ खोईरा दिखा दिया। उसने तैरना बंद किया, और जब नाव में गई, उसने देखा कि सिर्फ एक मील तैरना था कैटलिना पहुँचने के लिए। बाद में जब उसे पूछा गया उसने क्यों तैरना रोक दिया, उसने कबूल किया कि ठंड के मौसम और दूरी के कारण नहीं था। उसने कहा, मुझे खोईरा ने धोखा दिया था। उसने बाद में फिर से उसी तैरने की कोशिश की और एक बार फिर खुरा आ गया, मगर इस बार वो जाती रही और सफलता पूर्वक तक पहुंच गई। इस बार जब उसने पूछा गया कैसे इस बार अलग था, उसने कहा कि वो तट के बारे में सोचती रही खुरा के बावजूद और तैरने के दौरान। आत्मा के संगत को पाने से और पवित्र मंदिरों में जाने के लिए योग्य होने से रोकती है अपने हृदय और मन में हमेशा मंदिर के सपने और उद्धारकर्ता के पवित्र घर को हमेशा याद रखे। कई हफ्ते पहले मैंने रीनो नेवाडा मंदिर के सेलेस्टियल कमरे में खड़ी थी। कमरे में आ रही रोशनी सुंदर थी और उसे शीशे के झूमर ने और आकर्षण बनाया था, जिसकी परछाई इंद्रधनुष जैसे रंगीन बन गई थी। मैं खुश हुई ये जानकर कि उद्धारकर्ता ही दुनिया का रोशनी और जीवन है। वहाँ खड़े खड़े मैंने अपने मन में मोरनाय के वादे को फिर सुना, जायन की पुत्रियां, जाग और धूल में से उठो और बुरे उपहारण और अशुद्ध वस्तुओं को छुओ तक नहीं, जागो और उठ जाओ और अपने सुंदर वास्तु को धारण कर ले ए जायन की पुत्री, कि जो वचन अमर पिता ने तुम लोगों को दिया था ए इज़राइल के घराने वो पूरा हो। मंदिर की वादे की आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पर सभी पीढ़ियों के लिए है। पिछले महीने सम्मेलन में मैं खुशी थी जब मैं एल्डर डेविड ए बेडना को सुनी आपको अपनी परिवार इतिहास और औरों के मंदिर कार्य में व्यस्त रहने को कहा, जो यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार के आशीर्वाद के बिना मर गए थे। जब उसने इस निमंत्रण को तुम्हें दिया मेरा दिल जोर से धका। धर्मशास्त्र और वादे में हम पढ़ते हैं आने अन्य चुने हुए आत्माओं के बारे में जो समय की पूर्ति में महान अंतिम दिनों कार्य को शुरू करने आएंगे, जिसमें मंदिर निर्माण और उसमें विशेषियों को पूरा करना मृत लोगों के मुक्ति के लिए शामिल होगा। वो चुने हुए आत्मा आप है। अभी वो समय है एक मंदिर सिफारिश के योग्य होने के लिए और हासिल करने के लिए। ये तुम्हारे दिन है और तुम्हारे कार्य शुरू हो गया है। ये काम करते समय तुम जायन के पहाड़ पर उद्धारकर्ता बनोगे। एल्डर रसल एम नेल्सन ने तुम्हारे बारे में कहा, गिरजाघर के जवान महिलाओं का प्रभाव एक सोए हुए दानों की तरह जागेगी, उठेगी और दुनिया के रहने वाले को प्रेरित करेंगी धार्मिकता की एक बलवान सेना की तरह। उठो और अपने स्थान इन महान अवसर पर ले लो, जिससे तुम्हारे भविष्य और दुनिया के भविष्य में सुंदर सुधार आएगी। जवान महिला, तुम एक तिरंगा हो, शुद्ध रहो, पवित्र आत्मा के साथ को तलाशो, अपने पाप और बुरे कर्म को तोप दो, अपना ध्यान अटल रखो और नैतिक अपवित्रता के कुइरा को तुम्हारे लक्ष्य को ढूंढ लाना ना करने दो। मंदिर जाने के लिए योग्य रहो, अपना चमकानी लगा लो। मैं अपने पूरे हृदय से गवाही देती हूँ कि परमेश्वर जीवित है। वो हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है जब तुम उद्धारकर्ता के करीब जाते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मोरनाय की तरह हम भी चुस्त रहे और उदाहरण बने, ताकि हमारी रोशनी देशों के लिए एक आदर्श बन जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।
express appreciation to all
के शुक्रिया करते हैं उन सब से जिन्होंने इस शाम हिस्सा लिया है और तुम हर एक को जो यहाँ है अब हमारे विशेष अधिकार है प्रॉफिट प्रधान थॉमस एस मॉन्सन से सुने उनके भाषण के बाद गायक मंडली और सभा बैठक को बंद करेंगे गाकर हाई ऑन अ माउंटेन टॉप अंतिम प्रार्थना केटी एलिजाबेथ गार्फ लॉरेल जो सॉल्ट लेक हाइलैंड द्वारा किया जाएगा प्रेसिडेंट मॉन्सन
On one occasion, I was in a conference center like this.
एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे और जब मैं जब आखिरी स्पीकर अनाउंस किया गया और इधर उधर देखा फिर चले गए
My dear young sisters,
मेरे प्यारे जवान बहनों तुमसे बातें करने की जिम्मेदारी मुझे विनम्र करती है मैं दिव्य सहायता के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं उस मौके के लायक बना दिया जाऊँ कुछ 20 साल पहले तुम्हें मरणशील का अपना सफर शुरू नहीं किया था तुम उस समय अपने स्वर्ग के घर में थे वहाँ तुम उनके साथ थे जो तुमसे प्यार करते थे और तुम्हारे अंत देख रहे थे परवाह करते थे समय आने पर धरती के जीवन तुम्हारे प्रगति के लिए ज़रूरी हो गया विद्याएं ली गई और भरोसे के बातें बताई गई थी तुम्हारे शरीर मिले और तुम मरणशील हो गई स्वर्ग के पिता की उपस्थिति से वंचित किया गया खुशहाली से तुम्हारा स्वागत हुआ इस धरती पर वो पहले कुछ वर्ष बहुमूल्य खास वर्ष थे शैतान के पास तुम्हारे बहकने की कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि तुम्हें जिम्मेदार नहीं हुई थी तुम परमेश्वर के सामने निर्दोष थी जल्दी ही तुम्हें उस समय में कदम रखा जिसे कुछ लोग भयानक युवा अवस्था कहते हैं मुझे पसंद है बढ़िया युवा अवस्था ये अच्छे समय है मौकों को ये भ्रांति का मौसम एक निर्माण का समय जिसमें शामिल है ज्ञान पाना और सच्चाई की खोज किसी ने भी युवकों की वर्षों को आसान नहीं कहा यह अक्सर असुरक्षित वर्ष होती है जैसे कि तुम किसी चीज के काबिल नहीं होते अपने दोस्तों में अपनी जगह ढूंढते हो ये वो समय है जब तुम और आज़ादी चाहते हो और शायद जितनी आज़ादी तुम्हें अपने माता पिता देना चाहते हैं इस समय ये वो बहुत आवश्यक वर्ष भी है जब शैतान तुम्हें बहकाएगा और सब कुछ करेगा जिसे तुम अपने स्वर्ग के घर जाने रास्ते से बैठक जाओ जहाँ से तुमसे प्यार करने वाले और तुम्हारे स्वर्ग के पिता है तुम्हारे आसपास की दुनिया इतनी अच्छी तरह से तैयार नहीं की हो तुम्हें इस अक्सर खतरनाक सफर में मदद कर सके दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रति आज्ञाकर्ता को काम कर दिया है जिसे सुरक्षा मिलती और जो शांति देता है बुराई को सहना अनेकता अश्लीलता नशा दोस्तों के प्रभाव की शक्ति ये और अन्य चीज पाप के सागर में कई लोगों को बहा लेते जाते हैं और कोई हुए मौकों ना मिले आशीर्वादों और टूटे हुए सपनों के चेताओं पर नष्ट हो जाते हैं क्या सुरक्षा का कोई रास्ता है क्या बताया गया है विनाश का से कोई बचाव है जवाब है हाँ मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि प्रभु के रोशनी देने वाले घर की ओर देखो मैं पहले भी कहा है मैं फिर से कहूँगा कोई कोयरा उतना गहरा नहीं कोई रात इतनी अंधेरी नहीं कोई हवा इतनी तेज नहीं कोई नाव चालक इतना कोया नहीं जिसे प्रभु का रोशनी दिखाने वाले घर ना बचा सकता है वो जीवन का तूफान में पुकारता है, वो कहता है इस तरफ है आए सुरक्षा, इस तरफ आए घर, और रोशनी के संकेत देता है जो आसानी से देख और कभी चुकता नहीं। अगर पालन किया जाए, ये संकेत तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएंगे। मैं आज रात में प्रभु के रोशनी दिखाने वाले घर के तीन जरूरी सिग्नल के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें मदद करेगा उस पिता तक पहुंचने में जो तुम्हारा आने का उत्सुकता से इंतजार करता है। वो तीन सिग्नल है विश्वासी, आज्ञाकारी और सहनशील रहना। पहला, मैं एक सिग्नल का नाम बोलूंगा जो मूल और आवश्यक है, विश्वास। विश्वास करो कि तुम स्वर्ग के पिता के एक पुत्री हो, कि वो तुमसे प्यार करता है और कि तुम यहाँ एक महान लक्ष्य के लिए हो, अपना आनंद उधार पाने के लिए। विश्वास करो कि सुसमाचार की सच्चाइयों के प्रति मजबूत और विश्वासी रहना बहुत आवश्यक है। मैं गवाही देता हूँ कि वो है। मेरे जवान दोस्तों, उन शब्दों पर विश्वास करो जो तुम हर हफ्ते जवान महिलाओं को मूल विषय में दोहराते हो। उन शब्दों के मतलब के बारे में सोचो। उनमें सच्चाई है। हमेशा दिए गए आदर्शों को जीने की कोशिश करो। विश्वास करो जैसे तुम्हारा मूल विषय बतलाता है कि अगर तुम उन आदर्शों को अपनाओगे और उस पर अमल करोगे, तुम्हारे तैयार रहोगे अपने घर और परिवार को मजबूत करने के लिए, पवित्र वादों को बनाने और पालन करने में। यह सुसमाचार की सुंदर सच्चाइयां है और उनका पालन करने से तुम जीवन पर यहाँ और वहाँ खुश रहोगे, सिवाय जब तुम उन्हें नज़रअंदाज करोगे। आप अपने से कोई बहनों नहीं तो बहुत छोटे उम्र से सुसमाचार की सच्चाइयों को सीखना शुरू कर दिया था। तुम्हें दुलारे माता पिताओं और परिवार करने वाले शिक्षा द्वारा सिखाया गया था। उन सच्चाइयों की मदद से तुम्हें गवाही प्राप्त हुई, तुम्हें उनके सीख पर विश्वास किया। भले ही वो गवाही धार्मिक रूप से और अध्ययन से बढ़ सकती है, ये जब तुम मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करी और गिरजाघर सभाओं में हर हफ्ते जाओ। शैतान अपनी पूरी शक्ति से कोशिश करेगा उसे मकसद करने के लिए। जीवन भर तुम्हें उसका पोषण करना होगा। एक तेज जलने वाली आग की तरह तुम्हारी गवाही अगर अच्छी तरह पोषण ना किया जाए, जलती हुई अंगारों के में नष्ट होने लगे और फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम ऐसा होना ना देना। अपने रविवार सभाओं और बीच हफ्ते की रात की गतिविधियों में जाने के अलावा, जब तुम्हें मौका मिले सेमिनारी में होने का, चाहे सुबह या अन्य समय की कक्षा में, उस मौका का फायदा उठाइए। कई बहनों अभी सेमिनारी ले रही है। जीवन में आए अन्य चीजें की तरह सेमिनारी अनुभव का हो, जो कुछ तुम हासिल करोगे वो तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे सीखने की दिलचस्पी पर निर्भर है। तुम्हारा स्वभाव विनम्र हो और तुम्हारा दिलचस्पी सीखने में हो। मैं कितना आभारी हूँ अपनी युव अवस्था में सभी की सेमिनारी जाने के मौके के लिए, क्योंकि उसे से मेरी गवाही बड़ी थी। सेमिनारी इस जीवन बदल सकते हैं। कई वर्ष पहले मैं एक निर्देशन का दल में था, एक आदमी के साथ जो जीवन में बहुत सफल था। मैं गिरजाघर के प्रति उसकी ईमानदारी और उसके वफादारी से प्रसन्न हुआ। मैंने सीखा कि उसने सेमिनारी के जरिए गवाही प्राप्त किया और गिरजाघर में शामिल हुआ। जब उसने शादी की, उसकी पत्नी गिरजाघर के बच्चे से सदस्य थी, वो किसी भी गिरजाघर के सदस्य नहीं था। इतने वर्षों में और उसकी पत्नी के कोशिशों के बावजूद, उसने अपने पत्नी और बच्चों के साथ गिरजाघर आने के कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और फिर उसने अपने दो बेटियों की सभा की सेमिनारी के जाना शुरू किया। वो गाड़ी में बैठा रहता जब तक कक्षा खत्म ना होती और फिर वो उन्हें पाठशाला ले जाता। एक दिन बारिश हो रही थी और उसकी एक बेटी ने उसे कहा, अंदर आओ पिताजी, आप हॉल में बैठ सकते हैं। उसने निमंत्रण स्वीकार किया। कक्षा का दरवाजा खुला था और वह सुनने लगा। उससे अच्छा लगा। बाकी के कक्षा के दिन वो अपने बेटियों के साथ सेमिनरी कक्षा में गया, जिसे उसने गिरजाघर में सदस्य पाई और जीवन भर के लिए गतिविधियों में आने लगे। सेमिनरी को आपके गवाही को बढ़ने और मजबूत करने दें। ऐसा समय आएगा जब तुम चेतावनियों को सामना करोगे जो शायद तुम्हारे गवाही के खतरे में डालेंगे या तुमसे टुकरा दोगी इन अन्य दिलचस्पियों को तलाश में। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि उसे मजबूत रखिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और सिर्फ तुम्हारी कि आग भड़कती रहे। मुझे जूली डी अज़ेवेडो हैंक्स के एक गीत को बोल याद आ रहे हैं। अपनी गवाही पर गौर करते हुए उसने कहा, बदलाव के हवाओं को अनुभव करते हुए, पीड़ा के बदल से घिरे हुए, अपने जीवन से उसकी रक्षा करो। मुझे वो गर्मी चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। चाहे तूफान आए, मैं गंभीर वर्षा में सामना करूँगा। मैं रेज जाऊंगी, आग का एक रक्षक। आप विश्वास करें और फिर अपने गवाही की आग को जोर जलने दे, चाहे वो भी हो। इसके बाद जवान महिला, तुम आज्ञाकारी रहना, अपने माता पिता को आज्ञाकारी, परमेश्वर के कानून की और आज्ञाकारी। वो हमें एक प्यार करने वाले स्वर्ग के पिता से दिया गया है। अगर उनकी आज्ञा मानी गई, हमारे जीवन ज्यादा भरपूर रहेंगे, कम उलझे हुए, हमारे चेतावनियों और मुसीबत जलने में आसान होंगे। हम प्रभु के वादा किए आशीर्वाद पाएंगे। उसने कहा है, वो हृदय चाहता है और एक इच्छापूर्ण मन और जो इच्छाप्रद और आज्ञाकारी होने वो जायन की जमीन के इच्छा का बनोगे अंतिम दिनों में। तुम्हारे पास सिर्फ एक जीवन है, जिन्हों के लिए उसे जितने को सके मुसीबत से दूर रखना। तुम्हें बखाई जाएगी कभी कभी उनके द्वारा जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हुए। कुछ वर्ष पहले मैंने माइमेड सलाहकार से बात की, जिसने मुझे अपने कक्षा के एक जवान महिला के साथ हुए अपने अनुभव को बताया। इस जवान महिला को कई बार बेकाया जाता था सच्चाई के मार्ग को छोड़कर पाप को अपनाने के। उसके पाठशाला को कुछ दोस्तों की बताओ में कर उसने पाप के मार्ग पर चलना शुरू किया। योजना बनाना था। वो अपने माता पिता को बताएगी कि वो जवान महिलाओं को गतिविधि के रात में जा रही है। उसने सोचा कि वो वहाँ उतनी ही देर रहेगी जब तक उसकी सहेलियों और उनकी लड़के वाले दोस्तों उसे लेने पहुँचे। फिर वो एक पार्टी में जाएंगे जहाँ नशीले पदार्थ पिए जाएंगे और जहाँ का स्वभाव इस जवान महिलाओं का सच्चाई के ज्ञान के अतिरिक्त होगा। शिक्षा ने प्रेरणा के लिए प्रार्थना किया और अपने सभी लड़कियों की मदद के लिए मगर खाक्षा की जवान मिला की खिलिए। शिक्षा को उस रात प्रेरणा मिला कि वो अपने पुराने योजना को छोड़ लड़कियों से नैतिक स्वच्छता के विषय में बात करें। जब लड़की की स्थिति की आवाज आई, उसे बुलाने के लिए बजी, उसने उस नरंदाज किया। वो पूरी शाम अपने शिक्षा और अन्य लड़कियों के साथ कक्षा में रही। परमेश्वर के दिखाए गए रास्ते पर चलने से बहकने से बच गई थी। शैतान को रोक दिया गया था। सभी जवान महिलाओं को कमरे से जाने के बाद यह जवान महिला रुक गई अपने शिक्षक को बात के लिए धन्यवाद देने के लिए और उसे बतलाने के लिए कैसे उसने उसकी मदद की थी घटना घटने से। एक शिक्षक के प्रार्थना का जवाब मिल चुका था. बाद में मैंने जाना कि अपने दोस्तों के साथ उस रात न जाने का निर्णय करने से पाठशाला के कुछ ही नामी लड़कियां और लड़के इस जीवन महिला को आविष्कार किया गया और कई महीनों तक उसकी कोई मित्र नहीं था पाठशाला में. वो महान नहीं पा रही थी कि वो उन सब चीज़ों को नहीं करना चाहती थी वो कर रही थी. उसके लिए एक बहुत की कठिन और अकेलापन का समय था. अब कई वर्ष बाद उसने मंदिर विवाह किया और उसके चार सुंदर बच्चे हैं. कितना अलग उसका जीवन हो सकता है. हमारा निर्णय हमारे किस्मत को तय करता है. अनमोल जीवन महिलाएं और हर और निर्णय लो जिससे तुम इस परीक्षा में सफल हो गए. यह मुझे क्या बनाएगा, यह मेरे लिए क्या करेगा, और अपने स्वभाव को यह मत कहने दो लोग क्या सोचेंगे, बल्कि ये मैं अपने बारे में क्या सोचूंगी. उस धीमी छोटी आवाज से प्रभावित हो जाओ. याद करो कि कोई पुरोहिती रखने वाले ने अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखा और तुम्हारे स्वीकृत में समय और कहा था, पवित्र आत्मा को ले लो, अपने हृदय को खोलो, अपने आत्मा भी उस खास आवाज के लिए जो सच्चाई की गवाही देता है. जैसे भविष्यवक्ता आइज़ाया ने वादा किया था, वे वचन तुम्हारे कानों पर पड़ेगा. मार्ग यही है, इसी पर चलो. हमारे समय का स्वभाव है खुला समाज. मैगजीन और दूरदर्शन आज के सितारों के दिखाती है सिनेमा खुद के और जिनकी जवान लोग नकल करना चाहते हैं, जिसे परमेश्वर के कानून का ना पालन करना और खुले रूप से पाप से भरी कार्य करना, ज्यादातर कोई बुरे परिणाम के बिना. इस पर विश्वास मत करना. एक दिखाने का समय आएगा जब और खर्च मिलेंगे मिलने के लिए. हम सबको अपने कर्मों पर परिणाम मिलेंगे, अगर इस जीवन में नहीं इस दूसरे में. सबके लिए नहीं कर दिया आएगा. क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने कार्यों से परेशान हो? अगर कोई अपने सफर में गिर गया है, मैं याद पैदा करता हूँ कि वापस लौटने का रास्ता है. उस प्रणाली का नाम पश्चाताप है. हमारे उद्धारकर्ता मरे ताकि तुम और मैं उस अभिष भरे उपहार को पा सके. भले ही रास्ता कठिन है, वादा सच्चा है. प्रभु ने कहा, चाहे तुम्हारे पाप लल्लू जैसा लाल हो, वो बर्फ जैसे सफेद हो जाएगा, और मैं उन्हें याद नहीं करूँगा. मेरे प्यारे जवान भाइयों, तुम्हारे पास चुनने के शक्ति का अनमोल उपहारी है. मैं निवेदन करता हूँ कि तुम आज्ञाकारी होने के चुनोगे. अंत में मैं सहनशील रहो. सहनशील रहने का मतलब क्या है? मुझे यह मतलब अच्छा लगता है. हिम्मत से बचे रहो रहना. हिम्मत जरूरत होगा तुम्हें विश्वास करने के लिए. वो कभी कभी आज्ञाकारी होने के लिए भी जरूरी होगा. वो सहनशील रहने के लिए भी जरूरी होगा जब तक तुम मर ना जाओ. मैंने कई लोगों से इन वर्षों में बातें की हैं जिन्होंने मुझे बताया, मेरे पास इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, इतनी चेताएं, मैं अपने जीवन के चेतावनियों से तंग आ गया है, मैं क्या कर सकता हूँ. मैंने उन्हें दिया और अब मैं तुम्हें देता हूँ. क्या खास सुझाव? स्वर्गीय मार्गदर्शन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्राप्त करो. भविष्य की चिंता करते हुए जीवन जीना कठिन है, मगर वर्तमान की परवाह करके जीना आसान है. हम सब सिर्फ एक दिन के लिए सच्चे रह सकते हैं, फिर एक और होता जाएगा जब तक हमें आत्मा के मार्गदर्शन में पूरा जीवन बिता लिया गया है. उद्धारकर्ता ने वादा किया, मुझको देखो और अंत तक सहनशील बने रहे, तब तुम जीवित रहोगे, क्योंकि वो अंत तक सहनशील बना रहेगा, उसे मैं आनंद जीवन दूंगा. इस कारण तुम्हें मरणशीलता में आए हो. मेरे जीवन शैलियाँ कुछ भी तुम्हारे लक्ष्य से जरूरी नहीं, जो है आनंद जीवन तुम्हारे पिता के राज्य में. तुम अनमोल हो हमारे स्वर्ग के पिता के अनमोल पुत्रियों जिन्हें एक कारण से इस दिन और समय पर धरती पर भेजा गया है, तुम्हें इस घंटे तक बचाया गया था। आश्चर्यजनक महान चीजें तुम्हारे लिए है अगर सिर्फ तुम विश्वास, आज्ञाकारी और सहनशील रहोगे। ये तुम्हारा आशीर्वाद हो, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, हम यहाँ इकट्ठे होने की अपॉर्चुनिटी के लिए आभारी हैं। हम इन भाषण के लिए आभारी हैं। हम पूछते हैं प्रिय पिता परमेश्वर, स्ट्रेंथ और करेज के लिए कि हम ठीक कि हम अपने प्रॉफिट की एग्जाम्पल को फॉलो कर सके, इस कॉन्फ्रेंस के अंत पर हम पूछते हैं कि हम सेफली घर जा सके यीशु मसीह के नाम में, आमीन।